कि मैं बाद में बहुत सोचती रही, क्योंकि जब स्टूडेंट्स की तरफ से फीडबैक आता है ना, जब भी कोई कुछ कहता है तो मुझे उसके फौरन बाद ये होता है कि किस बात ने इनको स्ट्राइक किया ना, लोग भेजते हैं आज के सबक ने बहुत अच्छा किया, ये किया, तो मेरा फौरन दिमाग बैक पे जाता है कि अच्छा क्या पढ़ा के आई हो ना। तो आज जब मैंने घर जाके फोन खोला कल, तो मुझे लगा कि इसमें मैसेज था किसी का कि आज के सबक ने बहुत फायदा दिया ये वो। तो नॉर्मल मैंने उसको समझा, तो साथ ही एक ऑडियो थी, मैंने उसको कभी नहीं सुनी है, बाद में देखी, रात को मैं बिल्कुल अकेली थी उस वक्त जब मैंने ये सुनी, तो मैंने नीचे भी नहीं पढ़ा कि वो क्या लिख रही हैं, लेकिन मैंने ऊपर से जब उनकी प्ले की, मैंने कहा कुछ मैसेज देना होगा, तो मैं एकदम डर गई, क्योंकि उनकी आवाज में कितना रोना था, क्या था, खुदा मुझे एकदम खौफ आया कि अल्लाह रहम करे वहां कुछ हो गया जहां से ये बात कर रही है। तो फिर मैंने उसके बाद जब नीचे उनका मैसेज पढ़ा तो फिर मुझे बात समझ आई। आप लोग भी सुन लीजिए। अब आप देखिए कि ये बातें वैसे तो नहीं ख्याल आता ना, हम मर गए तो हमारे बच्चों के साथ क्या होगा, ये सोच अगर हमें जिंदगी में रहती है तो हम इसका क्या तरीका कर सकते हैं। एक और शेयरिंग आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि किस तरह से इंसान अपने बच्चों का माइंड सेट कर सकते हैं। चूंकि सूरत अलनकबूत में भी हमने यही आयतें पढ़ी कारून के बारे में, और सूरत रूम जो है ना, इसको तो मैं सूरतुल आयतान कहती हूँ, यानी आयतों वाली सूरत है, और सूरतुल फितरा भी मुझे ये अच्छी लगती है कहना इसको, कि हकीकत में ये इंसान की फितरत पे जो पर्दे पड़े हुए ना उसको हटाती है। तो ये सारी शेयरिंग हमारी इसी से मुतल्लिक है कि हम अपने बच्चों को इंसान से बंदा कैसे बनाएं, क्योंकि जब तक हमने अपने बच्चों को इंसान बनाया वो इस दुनिया के अंदर भाग दौड़ को ही अपनी जिंदगी की मिराज समझेंगे, लेकिन इनको बंदा बनाने के लिए हमें खुद भी तो फिर अल्लाह का बंदा करना पड़ता है। ये शेयरिंग है इत्मीनान की दौलत, मैं पढ़ देती हूँ और ऐसे ही लफ्ज़ बलफ्ज़ तो आप लोग भी सुन लें। तवील है लेकिन फायदेमंद है इंशाअल्लाह। टॉपिक है इसका इत्मीनान की दौलत। बाबे ने लंबा सांस लिया और बोला, काके तुम क्या चाहते हो? समझते हैं ना थोड़ी सी पंजाबी तो। बाप ने अपने बेटे से पूछा कि बेटे तुम क्या चाहते हो? मैंने अर्ज किया, क्या आपको वाकई सोना बनाना आता है? आपको पता ना कि जो कारून था वो भी सोना बनाने का माहिर था। बापे ने खाली नजरों से मेरी तरफ देखा और हाँ में सर हिलाकर बोला, हाँ मैंने जवानी में सीखा था। मैंने अर्ज किया, क्या आप मुझे ये नुस्खा सिखा सकते हैं? बाबे ने गौर से मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम सीख कर क्या करोगे? मैंने अर्ज किया, मैं दौलतमंद हो जाऊंगा। अब ये जो क्वेश्चंस है ना बेटे के साथ या बाबे के बाद लड़के के साथ, ये है असल में इस पूरी शेयरिंग का पिन पॉइंट। ये सोच आप अपने बच्चों के साथ करें शेयर, और ये उनको थॉट दें कि वो तुम क्या करोगे दौलत लेकर। कहा कि मैं दौलतमंद हो जाऊंगा। बाबे ने कहका लगाया और हंसता रहा, देर तक हंसता रहा, यहां तक कि इसका दम टूट गया और इसे खांसी का शदीद दौरा पड़ गया और पूछा, तुम दौलतमंद होकर क्या करोगे? ये अब दूसरा क्वेश्चन है। मैंने जवाब दिया, मैं दुनिया भर की नेमतें खरीद लूंगा। इसने पूछा, नेमतें खरीद कर क्या करोगे? इसको कहते हैं क्रॉस क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन पे क्वेश्चन और उसकी सोच को उभारने की बात है। नेमतें खरीद कर क्या करोगे? मैंने जवाब दिया, मैं खुश होऊंगा, फिर मुझे सुकून मिलेगा। ऊपर क्या था? सोना। और आखिर में क्या निकला? सुकून। ठीक है। इसने तड़प कर मेरी तरफ देखा और कहा, गोया तुम्हें सोना और दौलत नहीं, सुकून और खुशी चाहिए। मैं खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। इसने मुझे झिझोड़ा और पूछा, क्या तुम दरअसल सुकून और खुशी की तलाश में हो? देखा जाए तो हकीकत यही है ना, दुनिया की दौलत से भी तो इंसान यही चीज लेना चाहते है ना। मैं इस वक्त नौजवान था और मैं दुनिया के हर नौजवान की तरह दौलत को खुशी और सुकून से ज्यादा अहमियत दिया करता था, मगर बाबे ने मुझे कंफ्यूज कर दिया और मैंने इसी कंफ्यूजन में हाँ में सर हिला दिया। बाबे ने एक और लंबा कहका लगाया, वो दम संभालते हुए बोला, काका मैं तुम्हें सोने की बजाय इंसान को बंदा बनाने का तरीका क्यों ना सिखा दो? ये हमने सीखना है, अपने बच्चों को इंसान से उठाकर बंदा बनाना है, यानी ह्यूमन से उठाकर स्लेव बनाना है अल्लाह का। मैं तुम्हें दौलतमंद की बजाय पुरसकून और खुश रहने का गुर क्यों ना सिखा दूं? मैं खामोशी से इसकी तरफ देखता रहा। वो बोला, अब ये बातें बहुत पते की हैं जो इंसान को बंदा बनाने वाली है। इंसान की ख्वाहिशें जब तक इसके वजूद और इसकी उम्र से लंबी रहती है, ये उस वक्त तक इंसान रहता है, यानी ख्वाहिशें इंसान के कद से लंबी, एक पूरी हो गई तो दूसरी, दूसरी पूरी हो गई तो तीसरी, और फिर उसके बाद सो ऑन, फिर तक तो इंसान रहता है। तुम अपनी ख्वाहिशों को अपनी उम्र खुशी भी पाओगे, तुम खुशी भी पा जाओगे और सुकून भी, और जब खुशी और सुकून पा जाओगे तो तुम इंसान से बंदे बन जाओगे। मुझे बाबे की बात समझ ना आई, जैसे आप में से भी बहुत सारों को भी समझ नहीं आई होगी, इल्ला माशाल्लाह। बाबे ने मेरे चेहरे पर तशकीक पढ़ ली, यानी उसको लगा कि मेरे दिल में डाउट्स आ गए, क्वेश्चन है, शक आ रहा है। वो बोला, तुम कुरान मजीद में पढ़ो, अल्लाह ताला ख्वाहिशों में लुथड़े हुए इंसानों को अन्नास कहता है, या अय्युहन्नास, ओ मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी, और अपनी मोहब्बतों में रंगे ख्वाहिशों से आजाद लोगों को अब्द कहता है, या इबादी, ओ मेरे बंदो। बाप तरफ इशारा किया और बोले, इसको बनाने वाला भी इंसान था, वो अपनी उम्र से लंबी और मजबूत इमारत बनाने के खप्त में मुब्तला था, वो पूरी जिंदगी दौलत भी जमा करता रहा, मगर इस दौलत और इमारत ने इसे सुकून और खुशी ना दी। खुश मैं हूं इस दौलत मंदी की गिरी पड़ी बारादरी में बरसती बारिश में बेअमान बैठ। बनाने वाला तो खुश नहीं था, लेकिन मैं खुश हूँ कि जहां से बारिश भी टपक रही है तो मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी। मैंने बेसब्री से कहा, और मैं भी, इसने कह कहा लगाया और जवाब दिया, नहीं तुम नहीं, जब तक तुम तांबे को सोना बनाने का खत पालते रहोगे, तुम इस वक्त तक खुशी से दूर भटकते रहोगे, तुम इस वक्त तक सुकून से दूर रहोगे। बाबे ने इसके बाद जमीन से छोटी सी टहनी तोड़ी और फर्श पर रगड़ कर बोला, लो मैं तुम्हें इंसान को बंदा बनाने का नुस्खा बताता हूँ, अपनी ख्वाहिशों को कभी अपने कदमों से आगे ना निकलने दो। ये नंबर वन टिप है। फिर दूसरी टिप जो मिल गया इस पर शुक्र करो, फिर तीसरी जो छिन गया इस पर अफसोस ना करो, फिर नेक्स्ट खुद ही नंबर डालते जाइए, जो मांग ले इसको दे दो, यानी अल्लाह कि नबी ने भी तो कभी किसी का हाथ खाली नहीं छोड़ा था ना, चाहे उसे भूल जाओ, यानी जो नहीं मांग रहा भूल गया तो फिर तुम पे कोई लाजमी नहीं है कि तुम भी जरूर उसको दो। जो तुम्हें भूल गया या तो इसने तुम्हें इग्नोर कर दिया या जो तुम्हारी एक केयर नहीं, जिसे खुदा ढील दे रहा हो इसका कभी इख्तसाब ना करो। कितनी बड़ी बातें, वाकई गोल्डन वर्ड्स हैं। यानी जिसको अल्लाह ने ढील दी हुई उसके गुनाहों की वजह से, गुनाहों के बावजूद अगर अल्लाह किसी को नहीं पकड़ रहा तो तुम भी उसके पीछे ना लग जाओ। और हम यही कह के तो लोगों को फिर अपने से काट लेते हैं ना। बिना जरूरत सच फसाद होता है, इसको तो बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, जो हम पहले बातें कर रहे थे ना उससे भी मिलती हुई है। जिस सच की जरूरत नहीं है ना वो फसाद फैलाता है। कोई पूछे तो सच बोलो, ना पूछे तो चुप रहो। जिंदगी के फैसले करने आ रहे हैं आपको इन बातों को सुनकर, हमारा मसला क्या है? समझ नहीं आती क्या करें, इस मौके पे क्या जवाब दें, क्या रिएक्शन अख्तियार करूं, मैं बड़ी अपसेट हूं। कोई जरूरत नहीं आपको अपसेट होने की, हक को पकड़ लें। ए दिलो वक्त रबुल तकवा, अदल करो, हक की बात करो। जिसका हक हो, जिसकी जिसकी साइड लेने की जरूरत है उसकी साइड लो। आप देखेंगे जिंदगी में बहुत सारी खताओं से बच जाएंगे। तजुर्बे कर करके जो गलतियों के साथ हम सीखते हैं ना, वो आप पहले सीख लेंगे जब आप लोगों का साथ सच की बात पे देंगे। आपको लगता है इसकी बात सच है, चाहे वो आपका दुश्मन है, बोले नहीं बात सच कह रहा है और ये बात ठीक है, चाहे आपकी सगी मां के मुंह से निकले, माँ की अपनी इज्जत प्यार रहमत, लेकिन उसकी बात ठीक नहीं है, मैं उसकी साइड नहीं ले सकती, क्योंकि इसी से फिर जिंदगी में बहुत सारे मामला बिगड़ने लगते हैं। खैर, फिर कहा कि ना पूछे तो चुप रहो। लोग लज्जत होते हैं और दुनिया की तमाम लज्जतों का अंजाम बुरा होता है। ये वाकई सच्ची बात है। हमें ऐसे हम अपनों में प्यार करते हैं ना, आज के सबक में बहुत कुछ आप देखेंगे, सारा रिश्तों पे सबक है कि किस तरह से इंसान दुनिया में जीता और लोगों को अपने लिए बहुत नागुजीर समझता है। तो लोग तो एक लज्जत देते हैं, आप अपने बेटे के साथ बैठती हैं आपको मजा आता है, शौहर के साथ बैठती हैं आपको लज्जत मिलती है, लेकिन हर लज्जत का अंजाम तन्हाई है, सब चला जाएगा दुनिया से। जिंदगी में जब खुशी और सुकून कम हो जाए तो सैर पर निकल जाओ। हाँ, कभी जिंदगी में कोई गम आए, कोई दुख आए ना, तन्हाई को आप इमोशनल टॉर्चर से गुजर रही हैं, कोई ट्रॉमा है, तो फिर सैर के लिए निकल जाए, घूमने चले जाए, अपने आप को रिलैक्स करें, तुम्हें रास्ते में सुकून भी मिलेगा और खुशी भी। माहौल चेंज होता है ना तो इंसान की तबीयत भी बदल जाती है। देने में खुशी है, वसूल करने में गम। ये भी बात आज के सबक में हम पढ़ेंगे। देने में खुशी है, वसूल करने में गम है। दौलत को रोकोगे तो खुद भी रुक जाओगे, चोरों में रहोगे तो चोर हो जाओगे, साधुओं में बैठोगे तो अंदर का साधु जाग उठेगा। ये साधु कौन है? आप इसको कह लीजिए कि तवक्कल वाले लोग, जो अल्लाह ने दिया उस पे राजी, अल्लाह वाले लोग। अल्लाह राजी रहेगा तो जग राजी रहेगा, वो नाराज होगा तो नेमतों से खुशबू उड़ जाएगी। इसको बड़ा बड़ा लिखें। ये मैं दिल कर रहा है कि इस पूरे को हम एक हैंडआउट बनवा के दें। कितने खूबसूरत लफ्ज हैं और ऐसे लगता है कि एक एक लफ्ज के अंदर तजुर्बों की बहुत गहरी मट्टी है। जब नाराज होता है ना तो नेमतों से खुशबू उड़ जाती है, सब कुछ वही होता है लेकिन इंजॉय नहीं कर पाता इंसान। जब तुम अजीजों, रिश्तेदारों, औलाद और दोस्तों से चिढ़ने लगो तो जान लो अल्लाह तुम से नाराज है। सिला रहमी चली जाती है, रिश्तेदार अच्छे नहीं लगते, सबसे बुरे हमारे रिश्तेदार, सबसे बुरी मेरी सास, सबसे बुरी मेरी बेटी, सबसे बुरी मेरी बहू और दिस एंड दैट, سمجھ لیجئے کہ رشتوں کی محبت کا جانا اللہ کی ناراضگی ہے. وجہ بھی صاف ظاہر ہے, الخلق عیال اللہ, مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کو اپنے کنبے سے بڑا پیار ہے. تو دین کا کام کرنا ہے نا, تو سب سے پہلے لوگوں کی محبت لانی پڑے گی. ہم نے زبردستی سب کو جہنم کے دروازے کے باہر نہیں چھوڑ کے آنا, ہاتھ پکڑ کے کسی بھی طرح لاڈ سے ان کو جنت کے دروازے تک لانا ہے, پھر آگے ان کا نصیب ہے. تو لوگوں سے ناراض نہیں ہونا, یعنی لوگوں سے دور نہیں ہونا. اور جب تم اپنے دل میں دشمنوں کے لیے رحم محسوس کرنے لگو تو سمجھ لو تمہارا خالق تم سے راضی ہے. اور ہجرت کرنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا. اللہ کے لیے کچھ چھوڑ کے تو دیکھو پھر کیا ملتا ہے. آپ آج اللہ کو ناراض کرنے لے کام کریں, سب لوگ آپ کے آگے پیچھے پھریں گے, لیکن آپ کہتے تم چھوٹو تو چھوٹو, رب نہیں چھوڑنا, تو پھر دیکھیے اللہ آپ کو دیتا کیا. بابے نے ایک لمبی سانس لی اور فرمایا, جاؤ, بس ایک چیز کا دھیان رکھنا, کسی کو خود نہ چھوڑنا. یہ بہت بڑی بات ہے. کڑوے سے کڑوا بندہ آپ کے سامنے آ جائے نا تو آپ ڈونٹ سے دس کے گیٹ آؤٹ, چلے جائیں, میں آپ کی شکل نہیں دیکھ سکتی, آپ آنکھیں بند کر سکتے ہیں, کر لیں, کانوں میں انگلی ٹھونس سکتے ہیں, ٹھونس لیں اس کی باتوں کو, سنیں, لیکن کبھی کسی کو یہ نہ کہیں کہ گیٹ آؤٹ. اور خاص طور پہ آپ دیکھیے جس جگہ انسان سے بندہ بننے کا سبق مل رہا ہے, آپ سوچ نہیں سکتے. صرف بات سمجھانے کے لیے کوئی اس سے بھی نہ لیجیے گا, لیکن آپ لوگ جو روز ماشاءاللہ صبح رول کال کے وقت میں آتے ہیں نا کلاس میں, آپ لوگ دیکھتے ہیں کون سی لسٹ چلتی ہے جو ڈے ون سے تھی, اس میں سے شاید 20 یا 10-15% لوگ اب نہیں آتے, مجبوریاں ہوں گی, لیکن انہوں نے چونکہ ہمیں نہیں کہا کہ اب ہم نہیں آئیں گے, دوسرے لفظوں میں ڈکلریشن فارم فل نہیں کیا, آج بھی وہ ہمارا حصہ ہے, ہر بکنگ شیٹ میں, رول کال شیٹ میں, ہر جگہ ان کا نام ہے. ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم ان کا نام نکالیں, یہ در و دیوار کل قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ ایک دفعہ وہ داخل تو ہوئے تھے نا. تو کبھی اللہ نہ کرے آپ کا بھی جانے کا موڈ ہو تو اپوائنٹمنٹ لے کر ڈکلریشن فارم دیں, ورنہ آپ کا سارا چکر چلتا ہی رہتا ہے. آپ کے اسائنمنٹ پرنٹ ہوتے ہیں, پرنٹ ہو نہ ہو بنتے ضرور ہیں, پیپر بنتے ہیں, آپ کا فیس کا ریکارڈ چلتا رہتا ہے, یہ سب آپ کے ذمہ ڈیو ہے قیامت کے دن. جو لوگ یہ سوچتے ہیں نا ہم نہیں جا رہے تو یہ سمجھ لیں گے ہم نہیں آ رہے, یہ رول ہمارا آج کا نہیں ہے, پچھلے 10 سال سے ہے. اور سب سے مشکل لگتا ہے کسی کے ڈکلریشن فارم پہ سائن کروانے, اسی لیے کہا کہ خود آ کے کریں. کوئی فون پہ آپ کو کہہ دے کہ میری کہہ دینا میں نہیں اب آؤں گی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے پی آئی اے کی ٹکٹ لی ہے, کہہ دیں گے کسی کو کہنا میں نہیں اب آ رہی, جا کے کینسل کراتے ہیں تو ریفنڈ ملتا ہے نا. تو بہرحال ہے, لیکن یہ ضرورت نہیں کسی کو کہیں کہ اب آپ نہیں آ سکتے. دنیا میں ایسا ہوتا ہے, فیل کر دیتے ہیں, اسکول سے نام کٹ جاتا ہے, بیڈ بہیویئر پہ برداشت کر لو, کر لو, کر لو, کر لو, ان کو لگے رہنے دو, شاید ان کا تذکیہ ہو جائے, لیکن کبھی کسی کو یہ نہیں کہو کہ جاؤ. اسی لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ کبھی کسی کو خود سے نہ چھوڑو. دوسرے کو فیصلے کا موقع دینا, یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ کبھی اپنی مخلوق کو تنہا نہیں چھوڑتا, مخلوق اللہ کو چھوڑتی ہے. کتنی بڑی بات ہے, اللہ کبھی اپنی مخلوق کو نہیں چھوڑتا, مخلوق اللہ کو چھوڑتی ہے. اور دھیان رکھنا, جو جا رہا ہو اسے جانے دینا, یہ بھی ایک بات ہے, جو جاتا پھر اس کو روک بھی نہیں آپ سکتے, مگر جو واپس آ رہا ہو اس پر کبھی اپنا دروازہ بند نہ کرنا. کتنی پیاری بات ہے کہ اس گھر کے دروازے آپ پر ہمیشہ کھلے, کبھی تانا نہ دو, الزام نہ دو. اور بعض دفعہ محبت میں بات وہ کہتے ہیں آپ کہاں تھی, بڑے دن کے بعد آ گئی, آپ کہاں سے ٹپک گئی. کبھی بھی دین والے کی اور قرآن والے کی زبان سے لوگوں کو یہ ان سیکیورٹی نہیں ملنی چاہیے کہ آ جاتے کہیں دیکھ کے آپ نظریں چرائیں کہ یہ پکڑ لے کے ہمیں کہیں گے کدھر ہیں آپ. ضرورت ہی کوئی نہیں, وہ جانے ان کا نصیب, ان کا رب, آپ کو کیا لگے. آپ تم کو محبتوں کا پیغام دیں. تو یہی بات کہہ دی کہ کبھی بھی مخلوق جو ہے, مخلوق چھوڑتی ہے, اللہ نہیں چھوڑتا. اور دھیان رکھو جو جا رہا ہو اسے جانے دینا, مگر جو واپس آ رہا ہو اس پر کبھی اپنا دروازہ بند نہ کرنا. یہ بھی اللہ کی عادت ہے, اللہ واپس آنے والوں کے لیے ہمیشہ اپنا دروازہ کھلا رکھتا ہے. تو اس کی دلیل ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون. توبہ کیا ہے؟ اللہ کا دروازہ کھلا ہے, کسی وقت انسان پلٹ سکتا ہے. تم یہ کرتے رہنا تو تم خوش اور پرسکون رہو گے اور تمہارے دروازے پر میلہ لگا رہے گا. यानी जिसमें ये खूबियां आएंगी फिर वो लोगों का भी पसंदीदा हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको इंसान से बंदा बनना? अभी कितना कम सीखा हमने, अब तो दुनिया से शायद जाने के वक्त करीब आ चुके होंगे, अल्लाह नोस दी बस किसने किस उम्र में जाना है। लेकिन अगर आप 30 से ऊपर हैं तो आज तो काट ही चुके हैं ना, आधी जिंदगी गुजर गई और आगे भी आधी तभी है अगर आपको अल्लाह ताला मुझे तबई मौत जिंदगी देगा 60-70 के बीच की, अदरवाइज किसी को नहीं पता कि हम में से किसकी वापसी का वक्त करीब है। तो सबसे मुश्किल एहसास खुद को अपनी मौत का एहसास देना। इस दुनिया के पीछे खप जाते प्यारों की बनाते हुए, फिर अपनी औलादों की बनाते हुए, और इस तरह नस्लों का नाम लेते हुए, पहले हम अपनी वजह से नहीं अल्लाह के बनते, फिर बच्चों की वजह से अल्लाह के कई काम कम होते हैं, फिर बच्चों के बच्चे हमारे पाँव की बेड़ियां बनते हैं, हमारे पोते हमारे नवासे, एक दफा उन्होंने हेलो हाई करना बड़े होके अगर जिस माहौल में पल रहे हैं, मदर डे या ग्रैंड मदर डे पे कोई कप ला के दे देंगे। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि हम अपनी नस्लों को सही रास्ते पर डाल के दुनिया से जाएं। आप कुछ किसी के जिम्मे है जी? आप
सर जी, मैं सुबह जब आई हूँ सॉरी बारिश से ताल्लुक तो नहीं रखती, अगर मुझे कहा है कि आप मार्केट पोस्ट खत्म हो रहे हैं और यकीन करें मेरे उस वक्त से मेरी तवज्जो कम हुई है कि मैं मार्च के बाद अगर कोर्स काम खत्म हो गया तो मेरे लिए मुश्किल होगा टाइम गुजारना, क्योंकि मैं समझता हूँ इतनी ब्लेस्ड हुई हूँ मैं, मेरा घर मेरे बच्चे।
देखें आप भी भोली हैं और इरम भी भोली है,
तो मैं अपनी जगह
ये कोर्स कभी खत्म नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। जी देखिए, जिस दिन आपने मैट्रिक किया था तो क्या आप फारिग हो गई थी? मैट्रिक के बाद कॉलेज का दरवाजा खुला ना, ये कोर्स कभी खत्म नहीं होगा, ये मैं आप सबको बता दूं, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं वो घर बैठ जाएं अभी से, ये कभी खत्म नहीं होगा इंशाल्लाह। हमारी जिंदगी अब खत्म होगी, ये कोर्स कभी खत्म नहीं होगा इंशाल्लाह। जी आप रिशिदा
जी, मेरे जमाव के साथ बात करते करते ये ख्याल आया कि मैं इनको कैसे एहसास दिलाऊं कि जिंदगी का मकसद होनी चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने लिख कर रख दिया कि डू यू वॉन्ट टू लिव अ पर्पसफुल लाइफ और डू यू जस्ट वॉन्ट टू एग्जिस्ट, और वो रखा। तो जब पढ़ती है ना तो वो सोचते हैं कि ये
अच्छी टिप है कि घर में लिख के लगा दें ऐसी छोटी खूबसूरत कोटेशन। इंशाल्लाह ताला हम एक छोटा सा सिलसिला शुरू करेंगे, फिर बाद में उसकी डिटेल्स दूंगी, अदरवाइज फिर टाइम बहुत लंबा हो जाता है। ऐसे कि आप नमाज पढ़ते हैं, टाइम भी हो जब शुरू हो जाए तो फिर तो दिल नहीं करता सबक शुरू करने को। नमाज पढ़ के साथ इरम खाना रेडी है तो ब्रेक साथ लें और फिर 10-12:30 तक हम शुरू करते हैं। सीधी सी बात है, आपने 12:30 लगाने लेकिन 20 मिनट के बाद आप लोग तिलावत प्ले कर दें, ठीक है जी। ऑनलाइन से भी आप लोग मेरे लिए हमारे साथ ही रहें तो 12:30 पे इंशाल्लाह ताला फिर हम एंड तक नॉन स्टॉप तफ़सीली लेंगे अल्लाह के हुक्म से। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बड़ी अच्छी किसी की शेयरिंग ऑन,
देयर इज नो कार इन दिस एक्सीडेंट।
स्टूडेंट बने, चलिए।
देयर इज नो कार इन दिस एक्सीडेंट।
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض،
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض،
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض،
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض،
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن،
ولك الحمد أنت رب السماء،
أنت الحق،
أنت الحق،
ووعدك الحق،
ووعد
وقولك الحق
وقولك الحق
ولقاؤك حق
ولقاؤك حق
والجنة حق
والجنة حق
والنار حق
والنار حق
والساعة حق
والساعة حق
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.